संयुक्त राष्ट्र समाचार महबूब खान से 4 अक्टूबर 2018 के इस अंक में शामिल हैं। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी के कहर से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आपात राशि। यमन और जिम्बाब्वे में हैजा से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू। दुनिया भर में लड़के और लड़कियों को यौन शोषण से बचाने के लिए सरकारों का आह्वान। तंबाकू सेवन से होते हैं बड़े नुकसान, कड़े नियंत्रणों से किया जा सकता है कम। और समुद्री व्यापार में हो रहा है फायदा, मगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तनाव से पड़ सकता है नकारात्मक असर। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत संयोजक मार्क लॉवकॉक ने 1.5 करोड़ डॉलर की रकम तुरंत देने की घोषणा की है। ये रकम सेंट्रल एमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड CERF में से दी जाएगी। गौरतलब है कि 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप और सुनामी ने शुक्रवार 28 सितंबर को इंडोनेशिया के केंद्रीय सुलावेसी क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी OCHA ने इस प्राकृतिक आपदा में बुधवार तक करीब 1400 लोगों की मौत हो जाने की खबर दी, जबकि करीब 2500 लोग जख्मी हुए हैं। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है, क्योंकि अभी बहुत से इलाकों में सहायता टीमें नहीं पहुंच सकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया,
मिस्टर लोकॉक सेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया इज एक्सपीरियंस्ड एंड वेल इक्विप्ड इन मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर्स, बट समटाइम्स एज विद ऑल अदर कंट्रीज आउटसाइड हेल्प इज आल्सो नीडेड।
श्री लॉकॉक ने बताया कि इंडोनेशिया सरकार इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में काफी अनुभवी और सक्षम है, लेकिन जैसा कि अन्य देशों के साथ भी होता है, बाहरी मदद की भी जरूरत होती है, जो बहुत निर्णायक भी साबित होती है। इस प्राकृतिक आपदा के नुकसान का दायरा देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और मानवीय सहायता संगठन जीवनदायी सहायता मुहैया कराने के लिए इंडोनेशिया सरकार और अन्य संगठनों के साथ मिलकर अथक काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक के शब्द। सहायता के लिए जो आपात राशि जारी की गई है, उससे संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों और मानवीय सहायता संगठनों को इंडोनेशिया सरकार को सहायता कार्यों में मदद देने में आसानी होगी। इनमें बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना, प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास मुहैया कराना, पीने के साफ पानी और साफ सफाई का पुख्ता इंतजाम करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता शिविरों का इंतजाम और सुरक्षा सेवाओं के प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। कई वर्षों से युद्ध का सामना कर रहे देश यमन और जिम्बाब्वे में कोलरा यानी हैजा की महामारी रोकने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि यमन में हाल के समय में तीसरी बार हैजा फैलने का खतरा मंडरा रहा है। हाल के सप्ताहों के दौरान हैजा के मामलों में चिंताजनक रूप से वृद्धि देखी गई है। हुदायदा और इब नामक दो गवर्नरेट में करीब 5,40,000 लोगों को ये टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले अगस्त महीने में इस टीकाकरण अभियान की पहली खुराक पिलाई गई थी। यमन में अप्रैल 2017 के बाद से हैजा के करीब 12,00,000 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 2,500 लोगों की मौत हैजा की वजह से हो गई, जबकि हैजा को रोकी जा सकने वाली बीमारी कहा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हैजा से प्रभावित लोगों में करीब 30% मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के होते हैं। यमन में 2015 में युद्ध में बहुत तेजी आई और तभी से वहां गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। करीब 1,60,00,000 लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ नहीं है और देश में सिर्फ आधी स्वास्थ्य सेवाएं ही काम कर रही हैं। उधर जिम्बाब्वे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 14,00,000 लोगों को हैजा से बचाने का टीका लगाने का कार्यक्रम बुधवार 3 अक्टूबर को शुरू किया। राजधानी हरारे के बाहरी इलाके में हैजा का पहला मामला सितंबर में दर्ज किया गया था, तभी से एहतियाती उपाय तेज कर दिए गए। ग्लेन व्यू नामक ये बस्ती बहुत घनी आबादी वाली है, जहां साफ सुथरे पानी की कमी की वजह से हैजा फैलने के आसार पैदा हो गए हैं। जिम्बाब्वे सरकार ने हैजा के फैलाव की चुनौती का सामना करने के लिए 11 सितंबर को एमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रभावित इलाकों में स्वच्छ पानी आपूर्ति, साफ सफाई का ठोस इंतजाम, गंदगी साफ करने और इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के प्रयासों के लिए जिम्बाब्वे सरकार की सराहना की है। दुनिया भर में लड़कियों और लड़कों के यौन शोषण को रोकने के लिए तमाम देशों की सरकारों से ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बुधवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सरकारों से ये भी कहा गया कि वो इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों और परिणामों के अंतर पर टेक्नोलॉजी की मदद से नजर रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम देशों में और समाज के हर तबके में हर दिन लाखों लड़कियों और लड़कों को यौन शोषण का शिकार बनाया जाता है, जो जीवन भर के लिए बहुत चिंताजनक अनुभव बन जाता है। इस बैठक का आयोजन वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन, द स्वीडिश मिशन टू द UN, द UN ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप्स और कुछ अन्य चैरिटी संगठनों ने मिलकर किया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में साल 2014 में 20 वर्ष से कम उम्र की करीब 12 करोड़ लड़कियों को यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। लाखों करोड़ों अन्य ऐसी लड़कियां और लड़के भी हैं जो अपने यौन शोषण के बारे में किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें बदनामी और अन्य परेशानियों में पड़ जाने का डर होता है। ब्रिटेन के एक स्वतंत्र चैरिटी संगठन ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ODI का अनुमान है कि लड़के और लड़कियों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन हिंसा होने के आर्थिक परिणाम करीब 7 ट्रिलियन के नुकसान के रूप में होते हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि लड़कियों और लड़कों पर होने वाली इस हिंसा को रोकने के प्रयासों में जितनी आर्थिक लागत आएगी, वो इस हिंसा का शिकार होने के बाद होने वाले नुकसान से कम होगी। उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने कहा कि इंटरनेट की वजह से भी बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं और चुनौतियां बढ़ रही हैं। हालांकि ये तसल्ली की बात है कि यौन हिंसा के प्रभावों के उपलब्ध सबूतों को देखते हुए अब कुछ सरकारों ने भी कार्रवाई करनी शुरू की है। ध्यान दिला दें कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों में लक्ष्य संख्या 16.2 तमाम देशों से बच्चों के साथ क्रूर बर्ताव, यौन हिंसा व तमाम तरह की अन्य हिंसा और तस्करी पर 2030 तक पूरी तरह रोकथाम लगाने का आह्वान करता है। धूम्रपान के नुकसान और खतरों के बारे में एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि धूम्रपान पर अगर सख्त कानून बनाकर कड़े नियंत्रण लगाए जाएं तो टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी WHO की ये ताज़ा रिपोर्ट ऐसे मौके पर जारी की गई है जब जिनेवा में तंबाकू नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू के उत्पादन और इस्तेमाल के 90% मामले विकासशील देशों में होते हैं। सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन और सेवन करने वाले शीर्ष 10 देशों में 9 विकासशील और 4 निम्न आय वाले देश हैं, जहां खाने पीने के सामान की उपलब्धता का भारी संकट है। इनमें भारत, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और मलावी जैसे देश शामिल हैं। पूरी दुनिया में करीब 6 ट्रिलियन सिगरेट बनाने के लिए 3,20,00,000 टन हरा तंबाकू और 22 अरब टन से ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिगरेट बनने के पहले और बाद में कितने संसाधनों को नष्ट करती हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि तंबाकू उद्योग से जो भी आमदनी होती है, उसका बड़ा हिस्सा विकसित देशों में पहुंचता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य फसलों की तुलना में तंबाकू की फसल पैदा करने के पर्यावरण संबंधी नुकसान ज्यादा होते हैं। उन्होंने तंबाकू की खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों को अन्य बेहतर फसलों की तरफ आकर्षित करने के लिए मदद दिए जाने का आह्वान भी किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पिछले 5 साल में पहली बार समुद्री व्यापार काफी मजबूत हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार युद्ध के मद्देनजर समुद्री रास्ते से होने वाले कारोबार के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल भी मंडरा रहे हैं। ये चेतावनी संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की तरफ से आई है। हालांकि ताज़ा व्यापार रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2017 के दौरान दुनिया भर के समुद्री कारोबार में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अंकिटाड महासचिव मुखीसा कितियुई का कहना था कि कुछ देशों द्वारा अपने हित साधने और दूसरे देशों को सबक सिखाने के लिए लगाए जाने वाले टैक्सों की वजह से वैश्विक स्तर पर व्यापार गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे समुद्री परिवहन साधनों की मांग कम होगी और इस तरह समुद्री कारोबारी गतिविधियों में नुकसान होगा। रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2018 नामक इस रिपोर्ट में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2017 में करीब 10 अरब 70 करोड़ टन के बराबर सामान समुद्री रास्तों से ले जाया गया। इसमें करीब आधा सामान सूखा हुआ यानी कच्चा लोहा वगैरह भी था जो चीन पहुंचना था, और चीन पहुंचने वाले इस सामान की वजह से ही वैश्विक स्तर पर समुद्री कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। अंकिटाड की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री परिवहन और कारोबार में ये बढ़ोतरी साल 2023 तक 3.8% की दर से जारी रहने का अनुमान है, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव ने समुद्री कारोबार में इस बढ़ोतरी के सकारात्मक माहौल में संशय पैदा कर दिया है। ये तो कोई कहने की बात नहीं है कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकत वाले देश हैं। तो आज के इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।